माता है और कन्या है, बड़ी जल्दी इसको चाहे बेसिक नॉलेज के रूप में ये ज्ञान हो और चाहे एडवांस के रूप में ये ज्ञान हो, तीसरे ज्ञान को ग्रास करने में माता है और कन्या बहुत जरूरी है।
The mothers and sisters grasp knowledge very quickly, whether the knowledge is in the form of basic knowledge or in the form of advanced knowledge. Mothers and sisters are very sharp in grasping the godly knowledge.
I look for a bar ke foundation mein rehte hain, jab vibration ka utna ankaran nahi hai.
The brothers remain in the outside vibration, in the worldly vibration, and since the mothers and sisters remain in the household and family, they do not get affected so much by the color of company of the outside world. Therefore, they get influenced quickly.
और मैंने देवर है ना, लड़का का नाम शिव रखा, बताया ना मैंने आपको, हमेशा वो तो शिव बाबा ही बुलाता है। मैं यही बोलती हूँ, तू अनजाने में भी बोलो मगर बुलाता तो शिव बाबा को, मतलब इतना मत ज्यादा भक्ति भी नहीं करता है, ज्यादा मेडिटेशन करना ऐसी कोई बात नहीं, और बुलाता है मेरे को, बताओ भाभी क्या है, बाबा को मिलकर आई है तो बताती हूँ ना, क्या बोला क्या बताऊँ, कुछ जानते तो नहीं, इसलिए कभी कभी लगता है हैदराबाद से किसी को बुलाऊं या ताड़ेपल्लीगुड़म से किसी बहन को बुला कर दे भी तो सब जी कहाँ चले जाएंगे, सबको कोर्स दे रहे
होते
हैं, ऐसा लगता है।
एक घंटा क्लास में
Someone said, Baba, my brother-in-law has kept his son's name as Shiva. As I told you earlier, he calls him by the name Shiv Baba. I always tell him that even unknowingly you take the name of Shiv Baba only. He doesn't practice so much of devotion, nor does he practice so much of meditation. But when I tell him that I met Baba, at that time he asked me to tell him what Baba said. But what to tell him since he doesn't know anything? So sometimes I feel that I should call some sister from Hyderabad or Thadepalligudam and take her to my village to give the course to everyone there. What is course? There is no big deal about the course. Course means filling force. We can tell them anything, but giving the introduction of the father, informing them the message of the father, that itself is a force of the course.
वो हमें दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी हस्ती जिसे भगवान कहा जाता है, हमें उसकी प्राप्ति हो रही है, इससे ज्यादा खुशी हो गया।
Let zeal and enthusiasm arise in the new souls. Let the impression be made on them and let their sorrow and pain start to diminish. The things which we cannot obtain from anybody in the world, we receive that from the biggest personality in the world, who is known as God. We are getting him as an attainment. Can there be any greater happiness than that?
निराकार का देना, आत्मा निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, आत्मा बिंदी है, जो बिंदु आत्माओं का बाप वो भी जो बिंदु है।
Firstly, give the introduction of the incorporeal. The soul is incorporeal. The father of the incorporeal souls is incorporeal. The soul is a point form. And the father of the souls who are point of light is also a point of light.
आत्मा को अपने भारतीय परंपरा में गीता में अरोमणियान सम्भ इस रूप में बोला गया है, अणु से भी अणु रूप है आत्मा, माने अति सूक्ष्म है, जिसकी यादगार में मस्तक में बिंदी लगाते हैं, आत्मा यहाँ टिकी हुई है उसकी यादगार में टीका लगाते हैं।
In the Indian tradition, in the Gita, it has been said for the soul in this form, Anuranyan Samanu Smaratya, that the soul is even smaller than an atom, that is, it is very minute, in the remembrance of which a bindi is applied on the forehead, and as the soul is situated over here, that is, the center of the forehead. So the tilak is applied as a remembrance of this.
So, वो आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप परमात्मा शिवजी का परिचय वो ये सिग्नलिंग।
The introduction of the souls and the introduction of the father of the souls, supreme soul Shiv Jyoti Bindu, that is basic knowledge.
और उसके बाद वो शिव ज्योति बिंदु जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है और वो शिवलिंग कैसे साकार में प्रवेश करके साकारी कर्मेंद्रियां होते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है।
एंड आफ्टर दैट कम्स द शिव ज्योति बिंदु हुज बिगर फॉर्म इज शोन बाय प्रिपेयरिंग अ शिवलिंग एंड हाउ दैट शिवलिंग इवन आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरियल बॉडी and in spite of having the corporeal organs, remains in the incorporeal stage.
साकार में प्रवेश करके साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है?
साकार है मतलब भगवान से प्रवेश करके साकार
कान है
निराकार है अलग होता है
कान है फिर भी कान होते हुए भी कानों से जैसे सुनते हुए न सुनना।
That means he has ears, but still, even on having ears, even though he hears through them, it is as if he doesn't listen.
दुनिया वो कलंकी रूप में आता है तो दुनिया कलंक लगाती है ग्लानी करती है लेकिन उस ग्लानी को अंदर नहीं डाल
देता। He comes in the form of kalankidar. So the world accuses him, defames him, but he doesn't take those accusations within himself.
So, ऐसे कान मजबूत करना
माने क्या बोलना चाहते
हैं? ये उसे निराकार का काम है, साकार में आते हुए आंखों से सब कुछ दुष्कर्म देखता है लेकिन देखते हुए भी न देखना और उसको अंदर धारण न करना किसी के अवगुणों को वो भगवान का काम है। निराकार जो पहली आत्मा इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होती है निराकारी स्टेज में उसका
मेकिंग द ईयर्स सो वेरी स्ट्रॉन्ग इज अ वर्क ऑफ दैट इनकॉर्पोरियल व्हाइल ही कम्स इन द कॉर्पोरियल थ्रू द आईज ही सीज ऑल द रॉन्ग डूइंग्स बट इवन दो ही सीइंग इट ही डजंट सी इट एंड द टास्क ऑफ नॉट इम्बाइबिंग एनीवन्स बैड क्वालिटीज विद इन हिमसेल्फ This is a work of that incorporeal, who is the first soul who gets revealed in the world in the incorporeal stage.
ऐसे ही नाक है, मुख है या जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया किया नहीं किया बराबर कर्म किया जाता है तो उसका लेपक्षेप लगता है पाप या पुण्य बनता है लेकिन जब कर्म किया और उसका मन के ऊपर कोई असर ही नहीं मन के ऊपर तो जैसे कि वो पाप या पुण्य बनता ही नहीं।
इन द सेम वे देर आर दीज ऑर्गन्स द माउथ नोज और विच एवर ऑर्गन विद विच वर्क इज परफॉर्म इवन वाइल परफॉर्मिंग वर्क थ्रू दोज ऑर्गन्स इट इज एज इफ वर्क इज परफॉर्म और नॉट परफॉर्म बिकम्स वन एंड द सेम When an act is performed, it accumulates in the karmic account. A sin or a virtuous deed takes place. But when some deed is performed and it doesn't at all affect the mind and intellect, then it is like it doesn't take the form of a sin or a virtuous deed.
So, ऐसी निराकारी स्थिति जो है, वो भगवान स्वयं प्रवेश करके जिस मुकाम में पार्ट बजाता है
such an incorporeal stage becomes of the fixed chariot in whom God Himself enters and plays a part.
उसको कहा जाता है अपनी भारतीय परंपरा में शिव शंकर बोले नाम, दो नाम शिव
शंकर.
In our Indian tradition, he is called Shiv Shankar Bholenath. There are two names, Shiv and Shankar.
दो नाम क्यों दे दिए? एक ही नाम दे देते? नहीं, आत्माएं दो हैं. शिव सुप्रीम सूर्य का नाम जो जन्मण के चक्र में ही नहीं आता, और शंकर उस आत्मा का नाम है जो जन्मण के चक्र में भी आती है, लेकिन यहाँ संगम युग में ऐसा पार्ट बजाती है जैसे कि जन्मण के चक्र में नहीं आती.
Why have two names been given? They could have given a single name. No, there are two souls. Shiv is the name of the Supreme Soul who doesn't come in the cycle of birth and death, and Shankar is the name of the soul who comes in the cycle of birth and death. But here in the confluence age, he plays such a part as if he doesn't come in the cycle of birth and death.
जो बेहद में ऐसा पार्ट बजा के दिखाती है संसार में कि जैसे जन्मान उसका होता ही
He is only one such unique soul who plays such a part in the world in the unlimited sense as if he doesn't take birth or as if he doesn't die at all.
मतलब हद में तो जन्मान ये होता है कि बच्चा गर्भ में आता है आत्मा बनके और फिर प्रवेश होकर के अपना गर्भ में 9 महीने का पार्ट बजाता है, फिर बाहर आता है तो उसका जन्म कहा जाता है. वो अपने बाप को पहचानता है, जब बड़ा होता है समझदार होता है तो बाप को पहचानता है, माँ को तो पहले से ही जानता है.
That means, as for the outside world, the birth and death takes place when a child enters a womb and plays a part in the womb for 9 months. Then it comes out, and when it comes out, it is said that it has taken birth. He recognizes his father when he grows up and becomes intelligent. He recognizes his mother previously itself.
ऐसे ही यहाँ बेहद में जो परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनने वाले जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से
In the same way, here in the unlimited sense, the one who listens to the knowledge that Paramatma Shiv comes and narrates through Brahma becomes a Brahma Mukhvanshavali Brahman, just as it is written in the scriptures that from the mouth of Brahma, Brahmins took birth.
तो ऐसे जो ब्राह्मणों की सृष्टि बनती है, उस ब्राह्मणों की सृष्टि में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं उनमें ये शिव आ जाती है कि जिससे पैदा होते हैं वो गुण उनके अंदर भी आते हैं ज्ञान सुनते सुनते.
Among the world of such Brahmins who are thus created in the superior Brahmins, this attribute develops that by continuously listening to the knowledge, the qualities of the ones from whom they take birth develops in them also.
माने वो चाहे तो प्रैक्टिस करके खुद को आत्मिक निराकारी स्टेज में धारण कर सकते हैं.
That means if they want, they can assume the soul conscious incorporeal stage through continuous practice.
आत्मा ही निराकारी बने तो बनेंगे कैसे? वो परमात्मा जो निराकार है सदैव, जो कभी साकार में आता नहीं है, माने गर्भ में प्रवेश नहीं करता, जो हमेशा अभोक्ता है. हम आत्मा सब भोगी है, मनुष्य आत्मा है, और वो अभोक्ता है, वो निराकार शिव ज्योति बिंदु. वो शिव ज्योति बिंदु जैसी सृष्टि में कोई आत्मा नहीं.
द सोल्स बिकम इनकॉर्पोरियल, बट हाउ कैन अ सोल बिकम इनकॉर्पोरियल? द परमात्मा हु इज ऑलवेज इनकॉर्पोरियल, हु नेवर कम्स इनकॉर्पोरियल, दैट इज ही डजंट एंटर इनटू द वूम. He is the one who is abhokta, always indifferent to the pleasures of the senses. And we all human souls are bogi, the ones who take the pleasures through the senses. He is abhokta. He is the incorporeal point of light, Shiv. No soul in this world is like that point of light, Shiv.
उस शिव ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनता है. शिवलिंग का मतलब है तो वो भी बिंदु शिव, लेकिन वो बड़ा रूप धारण करता है, माने किसी शरीरधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके ऐसा बाढ़ बजाता है जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं.
The big form of that point of light, Shiv, is shown by preparing the Shivling. As such, even he is a Bindu, Shiv, but he takes a big form. That means he enters into a corporeal body, and on entering in him, he plays such a part as if he doesn't have organs at all.
माने उसको कर्मों का लेप छे, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाता है उसका लेप छे नहीं लगता, उसको कहा जाता है संकर.
That is, he doesn't get affected by the accounts of karma, by the acts which are performed through the organs. He is called Shankar.
शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद. शिव शंकर भोलेनाथ. शिव पिता, शंकर बच्चा.
The name of Shiv comes first and the name of Shankar comes later on. Shiv Shankar Bholenath. Shiv is a father and Shankar is a son.
जितने भी देव आत्माएं हैं, 33 करोड़ देव आत्माएं, उन 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़ा देवता जिसे महादेव कहा जाता है वो है शंकर.
From among the 33 crore deities, the biggest of them who is called Mahadev is Shankar.
तो वो देवता है, परमात्मा परम पिता नहीं. वो परम पिता शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो कहा जाता है परम पिता परमात्मा.
In fact, he is a deity and not the supreme soul, supreme father. When that supreme father, Shiv, enters into him, at that time he is called Parampita Paramatma, supreme father, supreme soul.
Paramatma Parampita nahi. Kya kaha jata hai? Parampita Shiv aur Paramatma jisme pravesh karta hai. Jisme pravesh karta hai wo atma kaisi hai? Paramatma. Kaisi atma? जितने भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन सब में परम.
नॉट परमात्मा परम पिता बट वॉट इज ही कॉल्ड? परम पिता शिव एंड द वन इन हुम ही एंटर्स इज कॉल्ड परमात्मा. हाउ इज दैट सोल इन हुम ही एंटर्स? ही इज द परमात्मा, सुप्रीम सोल. वॉट टाइप ऑफ अ सोल? ही इज सुप्रीम वेन कम्पेयर टू ऑल द सोल्स who come in the cycle of birth and death. Baba said to one of them, bring that Mataji closer. At least she will get to hear something or the other.
तो कान की मशीन भी बनवाई है क्या?
मशीन
है अभी. मशीन लगी हुई
फिर भी वो
अभी तक जो आप पूछिए जो कुछ बाबा बोल रहे थे वो आप सुन रहे थे क्या?
विपचिंदा बाबा विपचिंदा नशे बहुत वीक हो
गई है. मशीन वीक हो गई
है. नशे बहुत वीक हो गई बाबा. अब डॉक्टर भी बोला हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते.
सिर्फ उनकी एक्शन से समझ लेते हैं.
मूवमेंट से ही
मूवमेंट. अच्छा सर,
यू हैड इन्फॉर्म मी दैट शी कैनॉट हियर. हैव यू गॉट द हियरिंग मशीन प्रिपेयर्ड फॉर हर? हैज द मशीन बीन इंसर्टेड इन हर ईयर? आस्क हर इफ शी हर्ड व्हाटएवर बाबा सेड. वन माताजी सेड द नर्व्स हैव बिकम वेरी वीक. द डॉक्टर हैज सेड दैट इट इज हेल्पलेस and that nothing can be done. She understands only through actions.
तो शिव और शंकर ये दो आत्माएं अलग अलग, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा समझा जाता है शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि शिव शंकर एक है।
These two souls, Shiv and Shankar, are different, but it is considered in the path of devotion. It is written in the scriptures that Shiv Shankar is one.
Shiva Shankar एक ही है, लेकिन ये तो अज्ञानता की बात है। शिव अलग आत्मा, उसका अर्थ ये है कल्याणकारी, और शंकर सारे संसार में शमन कर दे, शांति उत्पन्न कर दे, शांति के वाइब्रेशन फैला दे, उसको कहते हैं शंकर।
शिव शंकर इज वन, बट दिस इज अ मैटर ऑफ इग्नोरेंस। शिव इज अ डिफरेंट सोल। The meaning of Shiv is Kalyankari, the benevolent one, and the meaning of Shankar is the one who makes the whole world silent, the one who brings about peace and spreads the vibrations of peace. He is called Shankar.
Shanti kab hogi? Jab sari duniya ka sanghar hota hai, to shanti shanti ho jati.
When will peace prevail? When the destruction of the whole world takes place, then peace and only peace prevails.
duniya ki abadi jab bahut badh jati hai to ashanti ho jati hai, aur badi hui sari duniya 500 700 crore jo bhi manushyon ki duniya hai wo sari sanghar ho jati hai.
When the population of the world increases to a great extent, chaos is created in the world and the vast human population of 500-700 crore gets destroyed.
Har har bum bum, atom bombs ke biscuit se. Shiv ka naam har bhi hai. Har maane paapon ko haran karne wala. To jo paapon ko haran karne wala Shiv hai, wo Shankar ke dwara har banta hai.
Due to har har bum bum, the explosion of atom bombs, even har is one of the names of Shiv. Har means the one who takes away the sins. Shiv, who takes away the sins, becomes Har through Shankar.
Jyoti Bindu roop mein kabhi har ban nahi ban sakta, mane paapon ka haran nahi kar sakta. Wo jab pravesh karta hai Mahadev mein, Shankar mein, tab wo har ban kaha jata hai.
He can never become Har and take away the sins in the Jyoti Bindu form, that is in the form of point of light. But at the time when he enters Shankar, that is Mahadev, he is called Hari.
Har aur Hari dono mein antar. Har kaha jata hai Shankar ke liye, sab paapon ka haran kar deta hai.
There is a difference between Har and Hari. Har is said for Shankar, who takes away all the sins,
aur Hari kaha jata hai शंकर जो है सारे विश्व का पिता है, जगत का पिता है। जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वर, सारे जगत का जो पिता है वो पिता इस सृष्टि पर आकर के जिस पहले बच्चे को जन्म देता है, सृष्टि की नई सृष्टि जो स्थापन होती है, और इस नई सृष्टि में आकर जिस पहले बच्चे को जन्म देता है उसका नाम पड़ता है कृष्ण।
And Hari is said for? Shankar is the father of the entire world.
Jagatam pitaram bandhi parvati parmeshwaram.
The father of the entire world comes in this world and gives birth to the first child of the new creation of the golden age. The name of that child is Krishna.
Isliye shastron kehte hai, hey Krishna Narayana Vasudev. Mane Krishna aur Narayana ek hi hai, अलग अलग नहीं।
So it is said in the scriptures,
हे कृष्णा नारायण वासुदेव,
which means Krishna and Narayan are one and the same, and that they are not different.
वो कृष्ण 16 कला संपूर्ण, जो इस सृष्टि का पहला पत्ता बनता है, सृष्टि रूपी वृक्ष है, उस सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण, उसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है।
That Krishna is complete in 16 celestial degrees, who becomes the first leaf of this world. The first leaf of this world life tree is Krishna, known as the one who is complete in 16 celestial degrees.
16 कला संपूर्ण जो कृष्ण कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सत्युग में होती है 16 कलाएं, त्रेता में होती है 14 कलाएं मनुष्य शक्ति, और द्वापर में होती है 8 कलाएं, और कलयुग में 4 कला से नीचे उतरते उतरते कला शून्य कलाएं सब खला, माने आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाए.
But why is he called so? It is because in this human world, 16 celestial degrees are present in the golden age, 14 celestial degrees in the silver age, and 8 celestial degrees are present in the copper age. And from the iron age, it keeps moving down from 4 celestial degrees and it gets completely diminished. It means the power of the soul reduces.
तो कृष्ण को जो 16 कला संपन्न इसलिए कहा जाता है कि वो सत्युग की आग में जन्म लेता है, लेकिन शास्त्रकारों ने गलती से कृष्ण को द्वापर में डाल दिया.
कृष्ण सेड टू बी कंप्लीट इन 16 सेलेस्टियल डिग्रीज बिकॉज ही टेक्स बर्थ इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज. But by mistake, the ones who have written the scriptures have placed Krishna in the copper age.
क्या के कृष्ण भगवान ने आकर के शक्ति पर द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया, और महाभारत युद्ध में जो महाभारत युद्ध में पांडवों की 5 की विजय हुई, और बाकी सारी सेना जो कौरव सेना थी यादव सेना थी वो अपोजिशन में थी वो सब खलास हो गए.
And say that Lord Krishna came in this world and caused the Mahabharat war at the end of the Copper Age. And in the war of the Mahabharat, the 5 Pandavas won and the rest of the army of the Kauravas, of the Yadavas who were in opposition got destroyed.
So, iska matlab ye hua ki Dwapar ke ant mein jab Krishna Bhagwan Bhagwan ban ke aaya, तो क्या उसने पापी कलयुग की स्थापना की? भगवान आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके छोड़े जाएगा? भगवान आएगा तो पुण्य की दुनिया बना के जाएगा या पाप की दुनिया बना के जाएगा? फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ?
This means that when Lord Krishna came at the end of the copper age in the form of God, did he establish the sinful world of the iron age? God will by no means come and establish the sinful world of the Iron Age. When God comes, will He establish a virtuous world or a sinful world? Then, what is the use of God's arrival?
तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए. भगवान ने बैठ करके शास्त्र नहीं लिखे. क्या? जैसे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम मोहम्मद आए तो उन्होंने कोई कुरान शरीफ लिखी नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से बोला.
द स्क्रिप्चर्स हैव बीन रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स. गॉड डिडंट सेट एंड राइट स्क्रिप्चर्स. व्हाट? जस्ट एज व्हेन द रिलीजियस फादर्स लाइक इब्राहिम मोहम्मद केम, दे डिड नॉट राइट द कुरान शरीफ, दे डायरेक्टली स्पोक थ्रू देयर माउथ.
क्राइस्ट ने आकर के बाइबल मुख से बोली, बाइबल के महावाक्य, उन्होंने कोई बाइबल लिखी नहीं.
क्राइस्ट केम एंड नरेटेड द वर्जन ऑफ बाइबल थ्रू द माउथ, ही डिडंट राइट द बाइबल.
ऐसे ही गुरु नानक ने तो डायरेक्ट मुख से बोला, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब है वो लिखा नहीं.
इन द सेम वे Guru Nanak also directly narrated through the mouth. He didn't write the Guru Granth Sahib.
इन धर्म पिताओं के आने के 300-400 वर्ष के बाद जब जनरेशन इनकी बढ़ जाती है तो वो पुस्तकें लिखी जाती
है. These scriptures are written 300-400 years after the coming of these religious fathers, that is when their generation increases.
ऐसे ही जो सनातन धर्म का पिता है परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसे दूसरे धर्म वाले गॉड फादर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह मियां कहते हैं, वो भी इस सृष्टि पर जब आता है, अल्लाह आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, उसको कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन।
इन द सेम वे द फादर ऑफ द एंशिएंट डेडी रिलीजन हु इज कॉल्ड द परम पिता सुप्रीम फादर हु इज नोन एज गॉड फादर by those of the other religions. The Muslims call him by the name Allah Mia. Even when he comes, he establishes the number one religion, which is known as Allah Awwal Deen.
Deen bane dharm. Aur sabse unche se unche dharm ki sthapna karne wala. Is srishti par jab aata hai, to wo aakar ke 16 kara sampurna srishti ki sthapna karta hai.
Deen means religion, the one who establishes the religion which is highest of all. When he comes in this world, he establishes a world which is complete in 16 celestial degrees.
Kalahin srishti nahi banata hai aakar ke jaise likh diya hai shastakaron. Wo dua karke ant mein aata hai aur kalahin kalyug ki sthapna karta hai. Ye baat bilkul galat hai. सच्चाई जो है सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है. गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है.
He doesn't establish a world which lacks virtue, like it has been written in the scriptures. It is wrongly known that he comes at the end of the copper age and establishes the iron world which lacks virtue. It is only the supreme soul who can tell the truth. It is said that God is truth.
अपने हिंदुस्तान में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम. क्या उसका पहला नाम है सत्य? जो सत्य है वो ही सुंदर है. क्या अगर असत्य है तो सुंदर हो ही नहीं सकता.
Even in India it is said that सत्यम शिवम सुंदरम. His first name is truth. The one who is true is beautiful. If he is false, he cannot at all be true.
Satyam Shivam. Jo satya hai, wohi kalyanakari hai. Agar jhoot hai, to kalyanakari ho nahi sakta.
Satyam Shivam. The one who is true is particularly benevolent, kalyanakari. If he is false, he cannot at all be kalyanakari.
Satyam Shivam. ये दो गुण जिसमें है वो सुंदर है. सत्य हो और कल्याणकारी वो असली सुंदर.
सत्यम शिवम द वन इन होम दीज टू क्वालिटीज आर प्रेजेंट इज सर्टनली ब्यूटिफुल. द वन हु इज ट्रू एंड कल्याणकारी इज जनरली ब्यूटिफुल.
तो अपने हिंदुस्तान में तो भगवान का नाम सत्यम कहा ही जाता है. सत्य ही शिव है. शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, ये गीत भी बनाए हुए हैं.
इन इंडिया एनीवेज गॉड इज नोन बाय द नेम सत्यम. ट्रूथ इटसेल्फ इज शिव. शिव हिमसेल्फ इज ब्यूटिफुल एंड ब्यूटी सीम्स वेरी डियर. द सॉन्ग हैज बीन क्रिएटेड.
लेकिन क्रिश्चियंस लोग भी गॉड फादर को ट्रूथ मानते हैं. गॉड फादर इज क्या है? सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है.
बट इवन द क्रिश्चियंस कंसिडर गॉड फादर एज ट्रूथ. गॉड फादर इज ट्रूथ. पर्टिकुलरली ट्रूथ इज कॉल्ड गॉड.
क्यों? क्योंकि भगवान तो बिंदु है. प्रैक्टिकल रूप में कोई बड़े फॉर्म में तो आता नहीं, बड़े रूप में तो आता नहीं. वो बिंदु है, गर्भ से जन्म लेता नहीं. वो जब बिंदु सृष्टि पर आती है तो सच्चाई सुनाती है किसी शरीर में प्रवेश करके. तो जो सच्चाई सुनाती है वो सत्य सत्य ज्ञान ही वास्तव में शिव का स्वरूप है.
Why? It is since God is a point. Practically he doesn't come in a big form. He is a point of light. He doesn't take birth from the womb. When that point of light comes in this world, he tells the truth by entering into somebody. In fact, the truth which he tells is a form of Shiv himself.
शिव और कोई रूप में संसार में प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता पहले पहले से पहले वो ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष होता पहले ज्ञान दाता या पहले ज्ञान
इनिशियली शिव डजंट गेट रिवील इन एनी अदर प्रैक्टिकल फॉर्म इन द वर्ल्ड फर्स्टली ही गेट्स रिवील्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज हु कम्स फर्स्ट द वन हु बिस्टोस नॉलेज और द नॉलेज इट सेल्फ
तो बिंदी है इन आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे जो सुप्रीम सोल शिव है वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता अपनी आत्मा ही नहीं आंखों से देखी जा सकती दूसरों की आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते तो जो सुप्रीम सोल है उसको कैसे देखेंगे
ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट विच वी कैनॉट सी थ्रू दीज आईज सुप्रीम सोल शिव cannot be seen through these eyes. It is not possible to see our own soul through our eyes. It is not possible to see other soul through these eyes. Then, how is it possible to see the Supreme Soul?
तो पहले ज्ञान आता है. ज्ञान माने सच्चाई आती है. ज्ञान माने जानकारी. किस चीज की जानकारी? सच्चाई की जानकारी.
Actually, Knowledge comes first. Knowledge means truth and knowledge means information. Information of what? It is the information of truth.
इस चीज की सच्चाई आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये सारी सृष्टि चक्र क्या है इसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी ज्ञान ही ज्ञान है ज्ञान
The truth Of what? The truth of what is the soul? What is the supreme soul? What is the world cycle all about? The information of all this is knowledge.
वो ज्ञान उसको कहा जाता है पहले रूप में जो ज्ञान बेसिक रूप में आता है उसका नाम शास्त्रों में मुरली देवी है क्या भगवान ने आकर के जो बेसिक रूप में ज्ञान सुनाया उसका नाम है मुरली
द नॉलेज विच कम्स इन द बेसिक फॉर्म इज नोन एज मुरली इन द स्क्रिप्चर्स द नॉलेज विच गॉड केम एंड टोल्ड इन द बेसिक फॉर्म इज नोन एज मुरली
मुरली नाम क्यों दिया वीणा नाम दे देते नगाड़ा नाम दे देते क्यों नहीं दिया इसलिए नहीं दिया कि दुनिया में जो भी माँ बाप होते हैं वो बच्चों की पालना के लिए पहले माँ को निमित्त बनाते हैं
Why is it given the name Murli? It could be given the name Veena. It could be named as Nagada. Why weren't these names given? It is because the parents who are there in the world initially make the mother instrumental for giving the child sustenance.
माँ जो होती है वो बच्चों की बड़े प्यार से पालना करती बाप इतने प्यार से पालना नहीं कर सकता बच्चों की माँ जितने प्यार से पालना कर सकती है सारी दुनिया फॉलो उसी को करती है जो परम पिता जब इस सृष्टि पर आता है तो जो आकर के वो पहले से पहले इस सृष्टि पर बड़ी माँ के रूप में सारी संसार के सामने
द मदर सस्टेन्स द चाइल्ड लविंगली The father cannot sustain the child with that much of love as much the mother can sustain. Particularly, the whole world follows him. When Parampita, the Supreme Father, comes into this world, he initially gets revealed before the whole world in the form of the eldest mother.
बड़ी माँ, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया है ब्रह्मा. ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माने वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि में आकर के जिस तन में प्रवेश करता है प्रवेश करके इस संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होता है वो माँ का रूप है
इन द स्क्रिप्चर्स द नेम ऑफ द एल्डेस्ट मदर इज गिवन एज ब्रह्मा ब्रह्म मीन्स बिग एंड माँ मीन्स मदर That means a body in which the Supreme Soul enters into in this world and initially gets revealed before the world is a form of the mother.
इस सृष्टि पर आकर के जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है वो व्यक्तित्व वही आत्मा है जो सत्युग की आदि में कृष्ण बच्चा थी. हे कृष्ण नारायण, कृष्ण बच्चा बड़ा होकर के नारायण बनता है.
The personality in which he enters when he comes in this world is the same personality who was child Krishna in the beginning of the golden age. He Krishna Narayan, that same Krishna grows up and becomes Narayan.
वो अपने 84वें जन्म में आकर के साधारण वृद्ध मनुष्य बन जाता है, जिसका नाम दादा लेखराज पड़ता है.
In his 84th birth, he becomes an ordinary old man whose name is known as Dada Lekh Raj.
और उस दादा लेख राज में सुप्रीम सोल प्रवेश करके ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है. गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुल जाता है.
And in him, the Supreme Soul enters and gets revealed before the world in the form of Brahma, that is the eldest mother. And in the villages, cities, within the country and abroad, the Brahma Kumari Godly University gets opened.
अभी practical में आप उनके address ले सकते हैं क्या? Practical में अभी एड्रेसेस लिए जा सकते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देश विदेश में और भारतवर्ष के तो गांव गांव में खुलेंगे.
Now you can practically take their addresses from the centers that have been opened throughout the country and abroad and also in each and every village in India.
तो ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के माँ के रूप में पार्ट में पहले पे यानी बच्चों को बड़े प्यार से पालना देता है. वो प्यार की जो वाणी है, मीठी मीठी वाणी, जैसे माँ बच्चों को सुलाती है, जैसे लोरी देती है ना, खाना खिलाती है तो भी प्यार में आकर के गीत गाती है. तो ऐसे ही परमात्मा की जो वाणी है वो मीठी मीठी वाणी है बूढ़े तक के द्वारा.
थ्रू ब्रह्मा ही प्लेज अ पार्ट ऑफ द मदर इनिशियली. That is, he sustains the children with a lot of love. That speech which is full of love, the sweet, sweet speech, just as when the mother puts a child asleep, she sings lullabies to them. And when she feeds them, she sings song with love. Similarly, the speech of the Supreme Soul is an affectionate speech to the old body.
वो मीठी वाणी का नाम मुरली इसलिए दे दिया है कि उसमें मिठास भरा हुआ. शास्त्रों में उसका नाम मुरली दिया है ना. तो वो मुरली जो है वो माउंट आबू से चलाई गई है और ये प्रैक्टिकल में देखी जा सकती है.
That affectionate speech is named as Murli since it is filled with sweetness. In the scriptures it has been given the name Murli, isn't it? However, that Murli has been recited from Mount Abu and can be practically seen now.
Mount Abu से ब्रह्मा के तन से दादा लेखराज के तन से यानी कृष्ण के 84वें जन्म के शरीर में आकर के परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई है उसका नाम मुरली और वो मुरलियाँ अभी भी छपाई जा रही.
From Mount Abu through the body of Brahma, दादा लेखराज, that is, after entering the body of Krishna in his 84th birth, the versions which Paramatma Shiv came and recited is known as Murli, which are even now being printed.
भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उनको शरीर छोड़े हुए अभी करीब 3537 वर्ष हो चुके, 37 साल उनको शरीर छोड़े हुए हो चुके, लेकिन वो मुरली ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अभी भी प्रिंट होकर के सभी सेंटर्स में भेजी जा रही.
इवन दो ब्रह्मा हैज लेफ्ट हिज बॉडी, 37 इयर्स हैव पास्ड सिंस ब्रह्मा लेफ्ट हिज बॉडी, बट इवन देन The Murlis are being printed in the Brahmakumari's ashram and are being sent to all the Brahmakumari's ashram.
वो जो मुरली भेजी जा रही है उस मुरली में ही लिखा हुआ है कि मुरली जो है वो तीन प्रकार का आसर करने वाली है.
In the murlis which are being sent, it is written that the murlis makes three types of impressions.
First class murli वो है जो बाबा मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं. क्या? जो सेवा सुप्रीम सोल किसी साकार तन में आकर के डायरेक्ट मुरली सुनाता है वो है फर्स्ट क्लास मुरली.
The first class murli is the one which Baba recites directly through the mouth. What? Supreme Soul, Shiv, enters into some corporeal body and recites the murli directly. That is first class murli.
Aur second class murli wo hai ki jo direct mukh se sunai hai wo tape recorder mein mute ho jati. माने जैसा सुनाई है वैसा ही टेप रिकॉर्डर सुनाएगा.
एंड सेकंड क्लास मुरली इज अ वन इन विच द डायरेक्ट वर्जन इज रिकॉर्डेड इन द टेप. दैट इज द टेप रिकॉर्डर विल प्ले जस्ट एज इट हैज बीन रिसाइटेड.
और गुड सेकंड क्लास वो है जो अभी डीसीडी में डीवीडी में उसका चित्र भी देखने को मिलता है. वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे लेकिन हलन चलन एक्ट वो सारी देखने में आएगी. तो ज्यादा गहराई से सब चीज वो गुड सेकंड क्लास.
एंड गुड सेकंड क्लास इज अ वन इन विच अ पिक्चर कैन बी सीन इन द वीसीडी डीवीडी एज सच. वाइब्रेशंस विल नॉट बी रिसीव्ड बट द मूवमेंट्स बिहेवियर एक्ट्स आर विजिबल. In that case, it can be understood more deeply. That is good second class.
और third class murli वो है जो भगवान बाप बोलते हैं और वो प्रिंट मशीन में प्रिंट हो जाती है. तो उसमें बाबा की क्यों की त्यों वाणी नहीं होगी बोली.
And the third class murli is a one which Godfather recites and gets printed in a print machine. Those murlis won't be having the accurate version of what Baba has said.
क्योंकि जो प्रिंट करेगा वो पहले शॉर्ट हैंड कर किया होगा. उसने बोलते समय किसी ने शॉर्ट हैंड किया होगा. शॉर्ट हैंड करते समय गलतियां हो जाएंगी. शॉर्ट हैंड करने के बाद फिर उसको साइकिल स्टाइल या प्रिंट में डालेगा तो कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा.
Since the one who will print will first have it done in shorthand, while it was being said, someone must have written it in shorthand. Mistakes take place while shorthand must have been written. After it is written in shorthand, he will put it in the cyclo style or print machine. At that time, some or the other difference takes place.
क्योंकि लिखने वाले से गलती जब शॉर्ट हैंड को वो प्रतिलिपि बनाएगा तो उसकी गलतियां होंगी. कुछ प्रिंट करने वाला जो कंपोज करता है वो गलतियां करेगा तो उसका रूप बदल जाता है.
सिंस द वन हु राइट्स मेक्स अ मिस्टेक व्हेन ही पुट्स अ शॉर्ट हैंड इनटू राइटिंग मिस्टेक्स टेक्स प्लेस. देन द वन हु प्रिंट्स दैट इज द वन हु कंपोजेस मेक्स मिस्टेक्स. In that case, its form changes.
जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े में एक बूंद सांप का बूंद डाल दिया जाए विष का तो सारा क्या हो जाएगा. थोड़े समय के बाद सारा ही घड़ा दूध का भरा हुआ विष बन जाए.
Just as if a drop of poison is added in a pot filled with milk, then what will the whole thing turn into? After some time, the entire pot of milk will turn into poison.
ऐसे ही भगवान की जो वाणी है उसमें अगर थोड़ा भी मिक्सरिटी हो गई गलती से भी तो थोड़े समय के बाद वो सारा ही विषैला हो जाता है. ईश्वरीय ज्ञान वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रह जाता.
Similarly, if by mistake even a little bit of Christianity takes place in the versions of God, then after some time the entire thing will become poisonous. The godly knowledge doesn't remain as God's knowledge.
इसलिए आप जो अभी बता रहे थे कि हम पढ़ते हैं,
क्या
वो पढ़ा हुआ जो है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो प्रिंट करने में गलतियां होती हैं। जो टेप रिकॉर्डर सुनाता है वो एक्यूरेट है।
You said just now that we read it, the mudli, that what you read is not accurate since mistakes take place while printing it. The one which the tape recorder plays is accurate.
और जो VCD से हमारे सामने आता है या DVD से हमारे सामने आता है वो थोड़ा और रिफाइन है। तो अगर सन्मुख हमको नहीं मिलता है क्योंकि ब्रह्मा ने तो सन्मुख छोड़ दिया।
The one which comes before us in the form of VCD or the one which comes before us in the form of DVD is more refined. In case if we do not get the direct murli because Brahma has left his body.
उनको जो शरीर छोड़े हुए हैं 35-40 वर्ष होने जा रहे हैं तो वो साकार ब्रह्मा का तंतु गया। हो सकता है सुनने वालों में से कोई कोई ने पूर्व जन्म में सुना हो।
35-40 years have passed from the time Brahma has left his body. However, that corporeal body of Brahma has gone. It is possible that some of them, amongst the ones who are listening, may have heard the versions in the previous birth.
क्या? क्योंकि पूर्व जन्म तो आज से 69-70 साल पहले सन 36 में आज से 69-70 ईयर्स पहले सन 36 में परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में प्रवेश करके या उनमें प्रवेश करके ये बात ज्ञान की बात सुनाना शुरू किया था या साक्षात्कार शुरू किया था, यानी इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत सन 36 से हुई थी।
What? Previous birth means 69-70 years back from today. In the year 1936, 69-70 years from today, Supreme Soul, Shiv, entered the body of Dada Lekhraj, Brahma, and started narrating the facts of knowledge, or started giving visions. That is, from the year 1936, the Yajna of knowledge started.
तो उस समय से लेकर के अब तक अगर किसी की आयु 69 या 70 से कम है तो हो सकता है उसने पूर्व जन्म में सुना हो।
In that case, from that time till today, if someone's, anyone PBK's age is less than 69-70 years, then it is possible that he must have heard the versions in his previous birth.
पूर्व जन्म में सुना है तो इसका मतलब डायरेक्ट उसने माँ की पालना पूर्व जन्म में ली।
If particular person has heard in the previous birth, that means he has taken the direct sustenance of the mother in his previous birth.
अब माँ के रूप में जो मीठी तान सुनाने वाली हस्ती थी वो तो चली गई।
Now the personality who used to recite the sweet tone in the form of mother has gone.
अब क्या वास्तव में जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर ज्ञान चल रहा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उस ज्ञान को सुनने वाले जो हैं, वो आत्माएं क्या डायरेक्ट भगवान के वचन से नहीं सुन सकती?
Now in reality, is it that the ones who are listening the knowledge which has been given in the Brahma Kumari's ashram, can they directly hear the versions of God?
भगवान क्या ज्ञान सुना करके ही चला जाता है? जैसे धर्म पिताएं आते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी आया राम गया राम हो जाता है।
Is it that God just recites the knowledge and goes? Just as the religious fathers come and give their knowledge, establish your religion and go away? Similarly, does God also just come and go away?
सृष्टि में परिवर्तन करके नहीं जाता है? क्या नई दुनिया बना के भगवान नहीं जाता है? जैसे और धर्म पिताएं आए और आकर के चले गए और दुनिया नीचे गिर रही, तो क्या भगवान भी ऐसे ही करता है? भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता।
Doesn't he transform the world? Doesn't he come and establish a new world? Just as the other religious fathers came, they came and went away, and the world keeps falling down. Well, does even God do so? God cannot do like this.
भगवान आएगा तो अपना काम पूरा करके जाएगा, और भगवान ही एक ऐसी हस्ती है कि जो पुरानी सृष्टि को, नरक की दुनिया को स्वर्ग बना करके जाता है।
When God comes, he will complete his work and go. And God is the only such personality who transforms the old world, the world of hell, into heaven.
इब्राहिम आए, वो भी धर्म पिता हुए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध आए, वो भी धर्म पिता हुए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट आए, वो भी धर्म पिता हुए, धर्म की स्थापना की, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। कितने बड़ी बड़ी हस्तियां आई और दुनिया की इतनी जनरेशन उनकी फैली हुई है।
Abraham came. Even he became a religious father. He established the Islam religion. Mahatma Buddha came. Even he became a religious father. He established Buddhism. Christ came. Even he became a religious father. He established the Christian religion. So many great personalities came. They are huge generation which has spread in the world.
Unko unhone aakar ke padhai padhai. और पढ़ाई पढ़ा करके गए और उसके बाद दुनिया जनरेशन उनकी नीचे गिरने लगी, तो क्या भगवान भी ऐसा ही करके जाता है? नहीं।
They came and taught the teachings to them, and after they taught and left, their generation began to fall down, decline. Then, does even God do like that and go? No.
भगवान इस सृष्टि पर आता है तो जिनको पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं में नंबर वाले, जो भी सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है उनमें दो तरह की होती है।
When God comes in this world and teaches, the ones whom he teaches are number wise. There are two types of persons from among the ones who sit face to face and get taught.
एक तो माँ के रूप में सन्मुख बैठ करके सुनती है। भगवान जब माँ के रूप में आता है, शास्त्रों में लिखा ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, श्लोक है ना।
वन टाइप इज ऑफ दोज हु सिट इन फ्रंट ऑफ द मदर एंड स्टडी व्हेन गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ द मदर। देयर इज अ श्लोक वर्स रिटन इन द स्क्रिप्चर्स,
तुमेव माता च पिता तुमेव।
देयर इज अ श्लोक, isn't it?
तो भक्ति मार्ग में जो गाते हैं, तुमेव माता च पिता, भगवान के लिए गाते हैं।
Now that what is sung in the path of devotion is sung for God, isn't it?
तो भगवान माता भी बनता है, भगवान पिता भी बनता है। माता किसके थ्रू बनता है? ब्रह्मा के थ्रू।
God becomes a mother as well as a father. Through whom does he become the mother? It is through Brahma he becomes a mother.
लेकिन माँ के थ्रू वो सिर्फ ज्ञान का डोज देता है, माने ज्ञान का दूध पिलाता है, बच्चों को बच्चे के रूप में पालना देता है, माँ के रूप में बेसिक नॉलेज देता है, लेकिन ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ाता।
बट थ्रू द मदर ही जस्ट गिव्स द डोज ऑफ नॉलेज, दैट इज ही जस्ट फीड्स द मिल्क ऑफ नॉलेज। He gives the children the sustenance in the form of children. He gives a basic knowledge in the form of mother, but he does not teach them higher studies.
माँ जो है बेसिक नॉलेज की घर में बैठे पढ़ाई पढ़ाएगी। जब बी एम ए की पढ़ाई पढ़ी जाती है तो बच्चा क्या माँ से पढ़ता है?
The mother will teach the lessons of the basic knowledge while sitting at home, but when the lessons of BA, MA are studied At that time, does a child study from the mother?
ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना पड़ता है ना एडवांसमेंट, तो ऐसे ही परमात्मा शिव भी सिर्फ ब्रह्मा के तन में आकर के मुरली चला के नहीं चला जाता, वो तो एक मूर्ति का कार्य है।
For higher studies, it becomes necessary for him to go to learn advanced studies. Similarly, even Supreme Soul Shiv doesn't just recite the Murli and go away when he comes in the body of Brahma. That becomes a task of just one Murti figure.
Shiv ke liye to kehte hain Trimurti Shiv. Is srishti ke devatae hain, unki sankhya hai 33 crore. Aur 33 crore devataon mein shesht devataen hain Ashtadev.
In fact, for Shiv, it is said Trimurti Shiv. The number of deities in the world are 33 crore, and from among the 33 crore deities, 8 deities, Ashtadev, are the ones who are superior.
Aur Ashtadevon se bhi shesht hastiyan jo hain, wo hain Tridev, Brahma, Vishnu, Mahesh, Shankar. To Brahma ke dwara kari karke nahi chala jata.
And that the Tridev, the Trimurti, Brahma, Vishnu and Shankar are the personalities who are more superior to the 8 deities, Ashtadev. However, he doesn't go away by just playing the part through Brahma.
Brahma ke dwara Brahman dharma ki sthapana karke fir wo jo Brahman ki shakti taiyar hoti hai us Brahman ki shakti mein चुनाव करता है श्रेष्ठ आत्माओं का, क्या श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करता है।
थ्रू ब्रह्मा ही एस्टैब्लिशेस द ब्राह्मण रिलीजन, देन ही मेक्स अ सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर सोल्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स दैट हैज गॉट रेडी।
पढ़ाई पढ़ाता है ना, तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले टीचर्स होते हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले जो पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो एग्जाम भी तो लेते हैं बच्चों का, एग्जाम लेते हैं तो उनके नंबर भी तैयार होते हैं।
He teaches, isn't it? In fact, even the teachers who teach take the examination of the children, and when they take exams, the numbers are also declared.
क्लास में नंबरिंग होती है कि नहीं? कोई बच्चे क्लास में अव्वल नंबर लेते हैं, कोई बच्चे अव्वल नंबर लेते हैं क्लास में, क्लास में फर्स्ट क्लास आते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं, अव्वल नंबर तो नहीं लेते लेकिन फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं।
इन द क्लास डज देयर बी नंबरिंग ऑन ऑफ, सम चिल्ड्रन टॉप द क्लास, दैट इज दे टेक द फर्स्ट नंबर इन द क्लास। Some children come in the list of those coming first class. They don't top the class, but they come in the list of those passing in first class.
कोई ऐसे होते हैं कि second class pass होने वाले की list में आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। कोई ऐसे होते हैं कि third class pass होने वाले की list में आते हैं, उनकी संख्या और ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं।
There are some who come in the list of those who come second class. They do be more in number. There are some who come in the list of those who come third class. They be even more in number. And there be some who fail.
तो ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। ईश्वर आकर के जब इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाता है तो ज्ञान सुनाने के बाद उस ज्ञान की परीक्षा भी लेता है।
In fact, even this is godly knowledge. When God comes into this world and gives the knowledge, then after giving the knowledge, He even takes the exam.
परीक्षा में ऐसे नहीं कि बेसिक ज्ञान में आने वाले सारे ही एडवांस ज्ञान में चले जाएंगे, ऊंची पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे।
In the exam, it is not so that all those who come in basic knowledge will go into the advanced knowledge and start studying the higher studies.
दुनिया में तो ऐसे ही होता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीए एमए की पढ़ाई पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं क्या?
इवन इन द आउटसाइड वर्ल्ड इट हैपेंस सो। how many among the students who study primary knowledge study BA, MA? Do all of them study?
Basic knowledge में बहुत होते हैं और advanced knowledge पढ़ने वाले थोड़े होते हैं. तो ऐसे ही ईश्वर भी जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा जो बेसिक नॉलेज देता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के थ्रू, तो वो आकर के उसको चुनाव करता है.
देर आर मेनी इन बेसिक नॉलेज एंड देर आर फ्यू हु सारी एडवांस नॉलेज. सिमिलरली इवन व्हेन गॉड कम्स इन दिस वर्ल्ड एंड गिव्स अ बेसिक नॉलेज थ्रू ब्रह्मा कुमारी स्कॉलरली यूनिवर्सिटी, देन ही कम्स एंड मेक्स अ सिलेक्शन.
उस चुनाव में जो बच्चे पास होते हैं उनका क्लास में ट्रांसफर होता है. बेसिक नॉलेज से वो बच्चे एडवांस नॉलेज में जाते हैं उनकी पढ़ाई में. तो जिनका क्लास ट्रांसफर होगा उनका स्थान भी बदल जाएगा और टीचर्स भी बदल जाएंगे कि वही टीचर्स रहेंगे.
द क्लास ऑफ दोज हू पास दैट सिलेक्शन gets transferred and they go from the basic knowledge into advanced knowledge, that is higher studies. Well, those whose class gets transferred, their place also gets transferred and their teacher also gets changed. Or is it that their teachers remain the same?
Teachers badalte hain na. To aise hi is ishwariya gyan mein Brahma aur Saraswati jo nimitt bane the ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए, वो तो चले गए. उनके चले जाने के बाद फिर दूसरी मूर्ति में परमात्मा शिव प्रवेश करते. वो दूसरी मूर्ति कौन?
Their teachers change, isn't it? Similarly, in the godly knowledge, Brahma and Saraswati, who had become instrumental to establish a Brahmin religion, left their bodies. After they left, Supreme Soul, Shiv, enters the second Murti figure. Who is that second figure?
जैसे पहली मूर्ति है कृष्ण वाली आत्मा जो सत्य की आदि का पत्ता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण अंतिम जन्म में 84वें जन्म में कलयुग के अंत में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है वृद्ध ब्राह्मण, और उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके उसका नाम देते हैं ब्रह्मा.
Just as the first Murti is the soul of Krishna, who is the first leaf of the beginning of the golden age, that same soul of Krishna, who is complete in 16 celestial degrees, in his last 84th birth, at the end of the Iron Age, becomes Dada Lekhraj, Brahma, an old Brahman, and in him, Supreme Soul Shiv enters and names him Brahma. Brahm means big and Ma means mother.
ऐसे ही वो ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है 69-18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया, उसके बाद परमात्मा शिव दूसरी मूर्ति में प्रवेश करते हैं. वो दूसरी मूर्ति भी राम वाली आत्मा है जो त्रेता में राम कही जाती है.
Similarly, when that Brahma leaves his body, on 18 January 1969, Supreme Soul Shiv enters into the second Murti figure. Even the second figure is the soul of Ram, who is called Ram in the Silver Age.
वो ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में कोई साधारण वृद्ध या बटुक ब्राह्मण बनता.
That same soul, by coming in the cycle of birth and death, becomes an ordinary old or Batuk Brahman in his last birth.
पहले जो योगियों में ईश्वर के रूप में गाये हुए हैं, वो हैं सनत कुमार, सृष्टि के आदि पुत्र.
Firstly, the one who is called the god of the yogis, the ones who perform penance, is Sanat Kumar, the first child of the world.
क्या ब्रह्मा से जो पहले चार पुत्र पैदा हुए हैं वो उन चार पुत्रों का नाम शास्त्रों में सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम दिया गया. उनमें सबसे बड़े जो हैं वो सनत कुमार गाए गए. सनत कुमार इसलिए बड़े गाए गए, वो ज्ञान में बहुत तीखे थे.
The names of the first four children who took birth through Brahma are given in the scriptures. Sanat, Sanatan, Sanandan and Sanat Kumar. The eldest among them is known as Sanat Kumar. Sanat Kumar was considered as elder since he was very sharp at knowledge.
So, bada aur chota, kyunki behad ki shakti taiyar ho rahi hai, isliye gyan ke aadhar par jo bada hoi bada khaira hai Ishwar ki nazar mein. Kyunki Bhagwan to gyani tu aatmao ko pasand karta hai.
Big and small is taken into account since an unlimited world is being created. Therefore, the one who is big on the basis of knowledge is considered big in the eyes of God, since God likes knowledgeable children.
Gyani tu atma hai, jaise Ramayana likha gyani prabhu pravesh pyara, gyani atma hai paramatma ko vishesh priya, bhakti bhi priya hai, lekin jo gyani bante hain wo bhagwan ko vishesh priya hai, kyunki bhagwan to buddhimano ki buddhi hai, buddhi gyan ka vishay hai.
Just as it's written in the Ramayana,
Gyani Prabhu Pravesh Pyara,
the knowledgeable souls are specially liked by God. Even the devotees are liked by God, but those who become knowledgeable are specially liked by God, since God is the intellect of the intellectuals. Intellect is the subject of knowledge.
So, gyan mana jankari, jankari lene mein jo sabse tikhe jate hain. भगवान का प्रैक्टिकल रूप और कोई चीज नहीं होती. भगवान तो आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो ही उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है. भगवान तो ज्योति बिंदु है.
नॉलेज मीन्स इन्फॉर्मेशन. दे आर द वंस हु आर वेरी शार्प इन टेकिंग द नॉलेज. देयर इज नो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गॉड अदर देन दिस. द नॉलेज व्हिच गॉड कम्स एंड गिव्स, दैट इज हिज प्रैक्टिकल फॉर्म. गॉड इज but a jyoti bindu, point of light.
वो बिंदु का आकार आकार शिवलिंग दिखाया गया है. शिवलिंग जो है वो गांव गांव में शहर शहर में उसका रूप बना हुआ है निराकार किया गया. वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता.
The form of that jyoti bindu is shown in the form of shivling. As a remembrance of that incorporeal one, shivling is prepared in every village and city. He doesn't come in the cycle of birth and death.
जन्म-मरण के चक्र में वो आत्माएं आती हैं जिनमें वो प्रवेश कर सकता है. तो जिनमें प्रवेश करता है उन आत्माओं को वो फर्स्ट क्लास रूप में संसार के सामने प्रवेश करता है, प्रत्यक्ष करता है.
The ones in whom he enters come in the cycle of birth and death. He reveals those souls in whom he enters in front of the world.
वो हैं भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले 108 श्रेष्ठ आत्माएं जो माला के मणकों के रूप में हर धर्म में स्मरण किए जाते आज भी. कोई धर्म ऐसा नहीं है नास्तिक धर्म को छोड़ करके, रशिया को छोड़ करके, जहां माला न स्मरण की जाती.
They are 108 superior souls who study the godly knowledge, who are remembered in the form of beads of the rosary in every religion even today. There is no such religion, leaving aside atheists, Russians, in which the rosary is not rotated.
Mala ki jo 108 manke hain, wo un shreshth atmaon ki yadgar hain, jo har dharm se atmaen chuni jati hain. Aur chun karke Brahma Kumari Ishwar Vishwavidyalaya mein aakar ke Brahman bante hain. उन्हीं ब्राह्मणों में से बेसिक नॉलेज लेने वालों में से फिर चुनाव होता है तो वो एडवांस में आते
हैं. द 108 बीट्स ऑफ द रोजरी आर इन द मेमोरी ऑफ दोज सुपीरियर सोल्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम एवरी रिलीजन. दे बिकम ब्राह्मण्स इन द ब्रह्मकुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी. सिलेक्शन टेक्स प्लेस वंस अगेन फ्रॉम दोज वेरी ब्राह्मण्स हु टेक द बेसिक नॉलेज एंड देन दे कम इन द एडवांस.
और वो एडवांस में आने वाली जो आत्माएं हैं वो दूसरी मूर्ति जो शंकर की मूर्ति कही जाती है माने राम वाली आत्माएं ही इस कलयुग के अंतिम जन्म में जब एटम बम तैयार होते हैं तो उस समय हर हर बम बम का नारा प्रैक्टिकल में साबित करने वाली शंकर की मूर्ति साबित.
and the souls who come in the advanced knowledge, they, through the second Murti, who is called the Murti of Shankar, that is, the soul of Ram, in his last birth, when atom bombs are prepared, the Murti of Shankar then becomes the one who proves the slogan of
Har Har Bam Bam
in practical.
शंकर को महादेव क्यों कहा जाता है? दूसरी देवताओं को महादेव क्यों नहीं कहा गया? जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा देवता कहा जाएगा। बड़ा काम कौन?
Why is शंकर called महादेव? Why the other deities are not called महादेव? The one who does the big work will be called a big deity. Who does the big work?
दूसरे धर्म के धर्म पिताएं जितने भी हुए हैं, उन्होंने वो बड़ा काम नहीं किया। जितना बड़ा काम परमात्मा सेवक शंकर के द्वारा करा गया। कौन सा कार्य? सब धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की है, अपने अपने धर्म की धारणाओं को सुनाया है और धर्म की स्थापना करके चले गए।
The religious fathers of the other religions did not do the big task which Supreme Soul Shiv gets done through Shankar. Which task? All the religious fathers came and established their own respective religions. They narrated the concepts of their own respective religions. They left after establishing their own religion.
Purani paramparaon ko kisi ne nasht nahi kiya. Purane jo dharma chale aa rahe hain unko nasht nahi kiya. जब पुरानापन खत्म नहीं होगा और नया धर्म स्थापन हो गया तो दोनों में क्या होगा? टकराहट ही तो होगी।
None of them destroyed the old traditions. None of them destroyed the old religions which were prevalent. When the old doesn't get destroyed and the new gets established, then what will happen between both? It is sure that they will clash among themselves.
तो इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। सनातन धर्म तो भारतवर्ष में पहले से ही स्थापन था। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया। गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म स्थापन कर दिया। जितने भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपना अपना धर्म की धारणा स्थापन कर दी और एक नया वाद चला दिया।
इब्राहिम केम एंड ही एस्टैब्लिश्ड इस्लाम रिलीजन। The Sanatan religion was established earlier itself. Then, Mahatma Buddha came and he established Buddhism. Christ came and he established the Christian religion. Guru Nanak came and established the Sikh religion. All the religious fathers came and established the concepts of their own religion and they started a new proposition.
Purane pan ka, purani kuritiyon ka nash किसी ने भी नहीं किया। वो कार्य शंकर के द्वारा परमात्मा आकर किया। सारा धर्मों का विनाश, धर्म के नाम पर जो वितंडावाद फैलाने वाले जितने भी अधर्म बन गए हैं, उन सब अधर्मियों का विनाश और सब धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आके कर।
None of them destroyed the old customs and everything that was old. The Supreme Soul gets that work done through Shankar, destruction of all the irreligiousness. The Supreme Soul comes and causes the destruction of all the worthless, controversial religions that have been started on the name of religion and causes the establishment of true religion through Brahma.
So, Brahma ke dwara shesh Brahman to tayyar hue pade hain, lekin unki pratyakshata tab tak nahi ho sakti. जब तक ढेर की ढेर तादाद में जो रावणों कुंभकर्णों मेघनाथ जैसे दुष्ट ब्राह्मण भी पैदा हो जाते हैं साथ साथ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी होती है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं जो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं।
सुपीरियर ब्राह्मण सोल्स हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा But their revelation cannot take place until the huge number of vicious Brahmins like Ravan, Kumbhakaran, Meghnad take birth along with them. The number of superior Brahmins do be less who take birth through the mouth of Brahma. they become the Brahmins who are the mouth-born progeny, who give importance to the knowledge given through Brahma.
ब्रह्मा के चोले को ज्यादा महत्व नहीं देते, ब्रह्मा से ब्रह्मा के शरीर को देह को प्यार नहीं करते, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह को प्यार नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी को ज्यादा प्यार करते हैं, महत्व देते.
They do not give more importance to the body of Brahma. They do not love the body of Brahma. They do not love the body of Brahma Kumar, Brahma Kumaris. But they love more the speech of God that came out from the mouth of Brahma.
वो मुखवंशावली ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे थोड़े होते, सप्तऋषि जी ने कहा जाता है, और बाकी सब आसुरी ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं, ढेर ढेर तादाद.
Those Brahmins who are the mouth-born progeny, like Vishwamitra, Vashishtha, are few in number. And are known as the seven sages, Saptarishis, and all the remaining who are created in huge numbers are the demonic Brahmins.
ये practical में अभी साबित होने वाला है. ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो देश में गांव-गांव में और विदेशों में भी जो फैला हुआ है, उसमें अच्छे से अच्छे तबके के भी ब्राह्मण हैं, लेकिन थोड़े हैं.
This is going to be practically proved now. The Brahma Kumaris Godly University, which has been opened through Brahma and has spread in every village in the country and also abroad. In that, there are Brahmins who are of a superior class, but they are a few in number.
और खराब से खराब तबके के भी ब्राह्मण हैं जो बहुत तादाद हैं. इसलिए ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली बोली है उसी में बाबा ने बोल दिया है कि दुष्ट से दुष्ट दुनिया के देखने हो तो यहाँ ब्राह्मणों के अंदर देखो, और अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं देखना हो तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर देखो.
एंड देयर आर ब्राह्मिन्स हु आर ऑफ वर्स्ट क्लास हु आर इन ह्यूज नंबर्स देयरफॉर इन द मुरली recited through the mouth of Brahma, it has been said, if you want to see the most vicious Brahmins of the world, then see them among these Brahmins. And if you want to see the best and the most superior Brahmins, then see them inside the Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya.
Mane, sab tarah ki atma hai, wohi atma hai. जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, दूसरे धर्म वाले तो कभी कन्वर्ट कर होकर हिंदू बने ही नहीं सिवाय जमातियों के.
दैट इज देयर आर सोल्स ऑफ एवरी टाइप, दे आर द सेम सोल्स हु केप्ट ऑन गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम द हिंदू रिलीजन इनटू अदर रिलीजन्स. द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स नेवर गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदू रिलीजन अदर देन द आर्य समाजीस.
आर्य समाज तो अभी अंतिम 100 वर्षों में फैला है, उससे पहले जितने भी धर्म पिताएं आए वो सब हिंदुओं में से ही कन्वर्ट करके अपना धर्म बढ़ाते रहे, संख्या बढ़ती रही दूसरे धर्म वालों की और हिंदुओं की संख्या कम होती रही.
हाउएवर आर्य समाज हैज स्प्रेड नाउ इन द लास्ट 100 इयर्स. ऑल द रिलीजियस फादर्स हु केम प्रीवियसली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द रिलीजन बाय कन्वर्टिंग द हिंदूज इनटू देयर रिलीजन. The population of the ones of the other religions kept on increasing and the population of the Hindus kept on declining.
दुनिया में जो धर्म अभी अभी आए 1000-2000 साल के अंदर वो 100-200 करोड़ की तादाद में जा रहे हैं, और देवताओं की देवता धर्म की जो आत्माएं हैं जो हिंदू कही जाती हैं उनकी संख्या 33 करोड़. संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए?
The population of the religions which have come lately within 1000 to 1000 years in the world is more than 100 to 100 crore. And the population of the souls of the deity religion who are called Hindus is 33 crores. Whose population should be more?
पुराने वालों पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या जो नए नए धर्म दुनिया में आए उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए? पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए. उनकी संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। कन्वर्ट क्यों होते रहे?
Should the population of the religion which is the oldest be more, or that of the religions which have come lately be more? The population of the oldest religion should be more. Why did their population keep on declining? It is because they got converted into other religions. Why did they keep on getting converted?
वही आत्माएं कन्वर्ट होती है जो पहली चतुर्युगी जो उससे पहले हुई पूर्व कल्प में दूसरे दूसरे धर्मों से खींच करके परमात्मा ने उनसे आत्माओं को दूसरे धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके ब्राह्मण बनाया था।
Only those souls get converted who had got converted in the previous kalp which consists of four ages. God pulled the superior souls of all the other religions and made them Brahmins.
वो ही ब्राह्मण आत्माएं अभी नंबर वार नौकुरियों के ब्राह्मण तैयार हो गए। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मणों की नौकुरियां होती
है। The Brahmins are the nine categories. It is written in the scriptures that there are nine categories of Brahmins.
नौ ऋषि हुए हैं। उन नौ ऋषियों के नाम पर ब्राह्मणों के नौ गोत्र हुए। कोई काश्यप गोत्र के ब्राह्मण, कोई भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, एक से एक अच्छे ब्राह्मण भी और एक से एक नीतिपुरी के भी ब्राह्मण बताए गए। तो प्रैक्टिकल में अभी तैयार हो गए।
नाइन सेजेस हैव बीन देयर। फ्रॉम द नेम्स ऑफ दोस सेजेस द नेम्स ऑफ द गोत्रास हैव बीन गिवन। काश्यप गोत्र, Bharatvaj Gotra. When compared, one Brahmin is superior to the other, and there are Brahmins who are one lower than the other with regards to category. They are practically getting ready now.
उनमें श्रेष्ठ हैं दो वंश जो शास्त्रों में गाये हुए हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्रवंश। तो शंकर जो तीसरे नेत्र के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो है ज्ञान सूर्य।
Among them, two dynasties are superior, which are famous in the scriptures. One is a sun dynasty and the other one is a moon dynasty. Shankar, who gets revealed in the world in the form of the third eye, is a sun of knowledge.
और ब्रह्मा जो शीतल ज्ञान देता है बच्चों को, वो शीतल ज्ञान की प्रकाश देने वाला है ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती हैं और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े सब खलास हो जाते हैं।
ब्रह्मा हु गिव्स अ कूल नॉलेज टू द चिल्ड्रन इज अ मून ऑफ नॉलेज। In the light of the moon of knowledge, even the insects and worm-like souls sustain. And in the light of the sun, all the insects and worms get destroyed.
तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो ब्राह्मण तैयार हुए हैं वो दो प्रकार के ब्राह्मण है। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की जैसी संख्या वाले भी ढेर के ढेर हैं और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी श्रेष्ठ संख्या वाले मुखवंशा वाली ब्राह्मण जो मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं वो थोड़ी तादाद।
वेल थ्रू ब्रह्मा इन द ब्रह्म कुमारी आश्रम टू टाइप्स ऑफ ब्राह्मण्स वर क्रिएटेड। द नंबर्स ऑफ द वंस हु आर ऑफ द टाइप ऑफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आर मेनी एंड द सुपीरियर सोल्स like the sages Vishwamitra, Vashishtha, who are the mouth-born progeny Brahmins, who bring changes in their life by listening to the knowledge spoken through the mouth, are a few in number.
यज्ञ के आदि में जो थे एकदम शुरुआत में सन 36 में, सन 36 से लेकर के 40-47 तक जो थे और उस समय चले गए वो थे सूर्यवंशी। उसके बाद फिर ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो वाणी चली है जिसे मुरली कहा गया ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में, सब धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही।
The ones who were there right in the beginning of the yagya in the year 1936, that is from 1936 to 1946-47, and then left the yagya and went away. They were the Suryavanshis, ones of the Sun dynasty. After that, the words which were recited from the mouth of Brahma, that has been known as Murli in the Brahma Kumari Godly University. The souls of all religions kept taking sustenance in the lap of Brahma.
Chandravanshi bhi pale, Baudhivanshi bhi atma hai, Islamvanshi bhi pale, mane har dharm ki chuni hui shresth atma hai jo brahman bane, wo Brahma ki god mein palti rahi. और वो अभी भी ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में पल रही
है। इवन द चंद्रवंशीज द वंस ऑफ द मून डायनेस्टी टुक सस्टेनेंस द सोल्स ऑफ द बुद्धिस्ट डायनेस्टी ऑल्सो टुक सस्टेनेंस एंड इवन द वंस ऑफ द इस्लाम डायनेस्टी टुक सस्टेनेंस दैट मीन्स द सुपीरियर सिलेक्टेड सोल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स हु बिकेम ब्राह्मिन्स केप्ट टेकिंग सस्टेनेंस इन द लैप ऑफ ब्रह्मा And they are even now taking sustenance in the Brahma Kumari's Godly University.
वहाँ जो वर्चस्व है ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो उन्हीं विधर्मियों का वर्चस्व हो गया है पूरा। जो चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वहाँ उनका कोई वर्चस्व नहीं
है। After Brahma left his body, the authority That is there in the Brahma Kumari's Godly University became the authority of the irreligious souls. The superior souls belonging to the Moon Dynasty have no authority there.
वो आत्माएं mostly assistant teachers के रूप में तो कार्य कर रही होंगी, लेकिन incharge के रूप में बहुत थोड़ी आत्माएं।
Mostly those souls may be working as assistant teachers. But there are very few of them who have been kept as in charge.
और जो in charge के रूप में काम कर भी रही हैं, उनके ऊपर जो पुराने पुराने सिंधी हैं, जिनका नाम शास्त्रों में जरा सिंधी दिया गया है, जरा माने पुराने, जरा माने जीर्ण और सिंधी माने सिंधी, क्योंकि इस ज्ञान की शुरुआत जो है सत्संग की शुरुआत सिंध हैदराबाद से हुई।
And even the ones who are working As in charge are under the old Sindhis who have been named as Jara Sindhi in the scriptures. Jara means old and Sindhi means Sindhi. It is because this knowledge, this satsang, which means a congregation gathered to worship and sing bhajans, started in Sindh, Hyderabad.
Jo duniya ke सबसे गिरी हुई किस्म के ब्राह्मण माने जाते हैं जो मांस गोश्त मछली अंडा शराब पश्चिम साइड के ब्राह्मण ये माना जाता है जितना जितना पूर्व साइड का ब्राह्मण होगा उतना कुछ कुल का होगा और जितना जितना पश्चिम साइड का ब्राह्मण होगा जैसे सिंध हैदराबादी ब्राह्मण सिंधी ब्राह्मण वो नीची कोटि के होते हैं उनका खान पान रहन सहन सब नीचा होता है
The western side Brahmins are considered to be the Brahmins of the lowest category in the world, who eat meat, fish, egg, liquor. It is considered that as much a Brahmin will be of the eastern side, that much high class Brahmin he will be, and as much a Brahmin will be of the western side, that much low class Brahmin he will be. Just as the eating, living, And all the other habits of the Sindh Hyderabadi Brahmins is of a lower grade.
तो सबसे नीची कोटि के ब्राह्मण में परमात्मा से वो पहले प्रवेश करते हैं और उसका नाम देते हैं दादा लेकर वो माँ के रूप में पाठ करते हैं। इसलिए शिव की जो तीन मूर्तियां गाई हुई है उन तीन मूर्तियों के तीन तबके हैं।
Initially, the supreme soul enters into the lowest class Brahmin and names him as Dada Lekraj. He played that part in the form of the mother. Therefore, the three murtis of Shiv, who are famous, have three levels.
जो आज भी झंडा के रूप में हमारे भारतवर्ष में जो झंडा है वो यादगार दिखाई गई है, तीन कपड़ों की यादगार.
Which are represented even today in the form of the flag in the region of India, Bharatvarsh. That flag is a reminder of the three cloths.
कपड़ा माना वस्त्र, शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई. वो तो गाते रहते हैं स्कूलों में, बच्चों से गीत गवाते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते. विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे. कोई कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है.
कपड़ा मीन्स क्लॉथ ऑफ सोल. देर आर थ्री बॉडीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ ड्रेस हु अचीव विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड. They just sing in schools. They ask the children to sing the song, but they do not know the meaning.
विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे.
Our vow will be accomplished when we achieve victory over the world. Let our flag be held high. By no means will a flag made up of cloth achieve victory over the world.
दुनिया में इतने झंडे हैं, कोई दुनिया का ऐसा झंडा है जिसने विश्व विजय करके दिखाई हो? लेकिन भारत के झंडे के लिए ये गायन है. माने तीन प्रकार के जो वस्त्र हैं, ऊपर है लाल वस्त्र, बीच में है सफेद वस्त्र और नीचे है हरा वस्त्र.
There are so many flags in the world. Is there any flag in the world that has achieved victory over the world? But this saying is famous for the Indian flag. That means the cloth which is of three types. The red colored cloth is on the top, the white color cloth is in between, and the green color cloth is below.
तो ऊपर का जो लाल वस्त्र है दुनिया में क्रांति करने का सूचक है. क्रांति से ही शांति होती है, सब धर्मों में खंडन कर देता है. शंकर का जो तीसरा नेत्र है, दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन कर देता है.
द रेड कलर क्लॉथ विच इज एट द टॉप इज एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. इट इज थ्रू रेवोल्यूशन दैट पीस इज एस्टैब्लिश्ड. डिस्ट्रक्शन इज कॉज इन ऑल द रिलीजन्स. शंकर्स थर्ड आई डिस्ट्रॉयज ऑल द इरिलीजियसनेस which have started in the name of religion in the world.
और ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा शिव ने जो धारणाएं स्थापन की है उनका संवर्धन करता है. माने ब्रह्मा द्वारा जो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है उसका संवर्धन, सच्चे ब्राह्मणों का संवर्धन, और जो दुष्ट ब्राह्मण है, दुष्ट सृष्टि है, वो सारी सृष्टि का विनाश.
And he protects the values which the supreme soul established through Brahma. That means the protection of the superior world which is created through Brahma. That is the protection of the true Brahmins and the destruction of the vicious Brahmins and the entire vicious world.
Dharma sansthapana arthaye. Aisa Gita mein shlok aaya hai na. Vinashaye cha duskratam. भगवान किस लिए आता है? धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्ट कार्य करने वाले जो अधर्मी हैं, उनका विनाश करने के लिए.
There is a श्लोक इन द गीता, isn't it?
धर्म संस्थापना अर्थ है विनाशाय च दुष्कृतम.
Why does God come? God comes to establish a religion and to destroy the irreligious people who perform vicious activity.
आज दुनिया का ऐसा देश कौन सा है जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है ये आतंकवादी है? और वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सबके ऊपर आक्रमण करके उनको हड़प करता जा रहा है, अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, ऐसा देश कौन सा है?
Which is a country in today's world who points a finger at other countries saying that he is a terrorist? And actually, if it is seen, then which is the country in the world that is attacking and capturing all the small countries and bringing them under their control? Which is a country which does so?
A अमेरिका, अमेरिका में कौन सा धर्म खंड के लोग ज्यादा है जो वहाँ वर्चस्व में है?
ईसाई।
क्रिश्चियन धर्म के लोग।
इट इज अमेरिका। पीपल ऑफ विच रिलीजन आर मोर इन नंबर देयर हु हैव सुप्रीमेसी इन अमेरिका? क्रिश्चियंस। इट इज अ पीपल ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन।
ऐसे अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दुनिया का छोटा रूप देखा जा सकता है। ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जा सकती है।
इन द सेम वे अ स्मॉल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सीन इनसाइड द ब्रह्मा कुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी। ब्रह्मा मीन्स द सोल ऑफ कृष्ण। The sign of the zodiac of Krishna and Christ can be tallied.
कृष्ण के भी कहते हैं पांव में कांटा लगा था, बहेलिए ने कांटा मारा तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और क्राइस्ट के भी पांव में हाथों में कांटा दिखाते हैं, कीड़ों में ठोक दिया गया तो उन्होंने शरीर छोड़ा।
It is said even for Krishna that a thorn had pierced his feet. A bhil, a hunter, had struck a thorn, so he left his body, and the thorns are shown in the feet and hands of Christ too. His hands and feet were nailed, due to which he left his body.
कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने जन्म किसी और माता से लिया और पालना कहीं दूसरी जगह हुई। ऐसे ही क्राइस्ट के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने किसी कुमारी से जन्म लिया और फिर पालना हुई उनकी बाद में कहीं और।
Even for Krishna it is shown that he took birth from some other mother and he was brought up somewhere else. In the same way it is shown for Christ that he took birth from some spinster and later on he was brought up somewhere else.
तो बहुत सी बातें जो है कृष्ण के जीवन में जो है वो क्राइस्ट के जीवन में भी देखने में आती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में दिखावा है बहुत ज्यादा, ऐसे ही कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारा दिखावा दिखाया गया है।
मेनी थिंग्स विच हैव टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ कृष्ण आर विजिबल इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जस्ट एज देयर इज अ लॉट ऑफ शो इन द क्रिश्चियन रिलीजन, सिमिलरली अ लॉट ऑफ शो is shown in the life of Krishna.
कृष्ण को कृष्ण के भक्तों ने बहुत ऊंचा करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ तक दिखा दिया कि वो भगवान की तरह साबित कर दिया कि गीता का भगवान साकार में जो रूप था वो कृष्ण था।
The devotees of Krishna have shown him to be very superior, but they have done so to such an extent that they have proved him as God, and that the corporeal form of the God of the Gita is Krishna.
अब गीता पढ़ी जा रही है तो पढ़ने वाले देखते हैं उसमें ढेर सारे ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों से ये साबित होता है कि वो तो निराकारवादी रचना है। गीता में ऐसे ढेर श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है वो निराकारी दुनिया का रहने वाला है भगवान।
Now, when the Gita is being read, the readers notice that there are innumerable such verses on the basis of which it gets proved that it is a creation of an incorporeal being. There are numerous such versions in the Gita which prove that God is a resident of the incorporeal world.
भगवान स्वयं गीता में श्लोक में बोल रहा है न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। मामा मना जिस दुनिया में सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं इस मृत्युलोक में वापस नहीं लौटती नरक की दुनिया में, वो मेरा परम धाम, शांति धाम कहो, परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, सोल वर्ल्ड कहो, वहाँ का मैं रहने वाला।
God himself is saying in the verses of the Gita that
न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम।
which means that where the light of sun, moon and stars do not reach, the place after going where the human souls do not return back to this land of death, this world of hell, that is my supreme abode. Then call it the land of peace or Brahmalok or soul world. I am the resident of that world.
तो सोल वर्ल्ड माने निराकारी आत्मा, सोल वर्ल्ड का रहने वाला भी तो निराकार होगा, तो निराकार तो भगवान साबित होता है गीता में, लेकिन गीता लिखने वालों ने किसका नाम ठोक दिया उसमें? श्री कृष्ण भगवान का, कृष्ण का नाम ठोक दिया।
Well, the soul world means the incorporeal land, and then the one residing in the soul world will certainly be incorporeal. In fact, in the Gita, it gets proved that God is incorporeal. But whose name has been inserted by those who have written the Gita? Sri Krishna Bhagwan Huvach. They inserted the name of Krishna.
So, ye jo Krishna ka naam thoka gaya hai, ye Krishna ke followers ne thoka. Brahmanon ki duniya mein bhi iski shooting hoti hai. परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शूटिंग कराते हैं संगमयुग में कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में 5000 वर्ष का जो भी ड्रामा है चार युगों का सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग इन चारों युगों की चार सिंह की शूटिंग कराते हैं।
It is the followers of Krishna who have inserted his name. Even in the Brahmin world, the shooting of this takes place. At the time when Supreme Soul Shiv comes in this world, he gets the shooting done in the confluence age, at the end of the Iron Age and at the beginning of the Golden Age. The shooting of the 5000-year drama, that is of the four ages, the Golden Age, the Silver Age, the Copper Age and the Iron Age. He gets done the shooting of these four scenes of the four ages.
वो चारों युगों की शूटिंग में परमात्मा जो है वो सारा ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दे करके उनको जिंदा करते हैं। जैसे अज्ञानी है, जैसे कि अज्ञान नींद में सोया हुआ है, मरा पड़ा है।
In the shooting of all the four ages, the Supreme Soul gives knowledge to all the 500 crore population and makes them alive. If one is ignorant, it is as if he is sleeping in the sleep of ignorance, as if he is dead.
जैसे मुसलमान लोग किसी लोग मानते हैं कि खुदा आकर के जब कयामत होगी तो कब्र में से आत्माओं को उठाएगा और वो जिंदा हो जाएगी। जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है वो कब्र दाखिल हो जाती है। ऐसे मुसलमानों की क्रिश्चियंस की मान्यता है।
Just as the Christians and Muslims consider that when calamity strikes, God will come and awaken the souls from the grave and they will become alive. The souls who leave their body get buried in the grave. This is what the Christians and the Muslims believe.
कब्र दाखिल हो जाने का अर्थ नहीं समझते। कब्र दाखिल हो जाने का सही अर्थ यह है कि इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो ज्ञानयुक्त होती हैं इस सृष्टि पर आदि में। असली ज्ञान उनके पास होता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है, ये ज्ञान उनके अंदर होता है।
They do not understand the true meaning of getting buried in the grave. The accurate meaning of getting buried in the grave is that all the human souls on earth possessed knowledge in the beginning and they have the true knowledge that we are souls, a point of light, and this body is just mud. It is an effigy of mud. They have this knowledge in them.
लेकिन कलयुग के अंत में आते आते ये ज्ञान उड़ जाता है। असलियत का जो ज्ञान है वो उड़ जाता है। माने सारी आत्माएं जो हैं वो मिट्टी अपने शरीर को समझने लगती है, अपने को ये समझती हैं कि हम बस मिट्टी के पुतले, ये सबको भूल जाता है कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा।
बट एज एंड व्हेन दे कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आयरन एज दिस नॉलेज वैनिशेस, द ट्रू नॉलेज वैनिशेस, दैट इज ऑल द सोल्स बिगिन टू कंसिडर देयर बॉडी एज मड, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज जस्ट एफिजीज ऑफ मड। Everyone forgets that they are souls who are a point of light.
हिंदू भी भूल जाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु यहाँ टिकी हुई है, स्टार। सिर्फ दिखाने के लिए टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, लेकिन उनको याद नहीं है।
Even the Hindus who apply the bindi and tilak forget that we are souls who are a point of light, and that the soul, the star, is situated here, center of the forehead. They just apply the bindi just for the name's sake, but they do not remember it.
वो आत्मा ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु में कैसे अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है, ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। उस आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां समाई हुई है।
This thing does not come into their intellect as to how the resolves of the numerous births are filled in that soul, that is a point of light. The three powers, mind, intellect and the resolves are contained in that soul.
जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो शरीर छोड़ करके आत्मा चली गई, तो उस शरीर में, मुर्दा शरीर में मन बुद्धि रह गई। शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, मन बुद्धि की शक्ति चली गई।
When the soul leaves the body, then it cannot be said that the mind and intellect have remained in the corpse of the soul that has left its body. When the soul leaves its body, it means that the power of the mind and intellect have gone away.
बाकी सारा शरीर रहा हुआ है, दसों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां रही हुई हैं, पूरा शरीर रखा हुआ है, क्या निकल गया? मन बुद्धि की पावर निकल, जो मन बुद्धि की पावर है वही आत्मा है।
एंड द एंटायर रेस्ट ऑफ द बॉडी इज लेफ्ट बिहाइंड, ऑल द 10 ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज एंड द सेंसरी ऑर्गन्स आर लेफ्ट बिहाइंड, द एंटायर बॉडी इज केप्ट देयर, देन What was it that went away? The power of the mind and intellect went away. The power of the mind and the intellect is itself the soul.
वो मन बुद्धि की पावर जो ज्योति बिंदु के रूप में यहाँ मस्तक में निवास करती है, उसी की रोशनी आंखों में से निकल गई। मनुष्य की मृत्यु होती है तो आंखों की रोशनी चली जाती है।
The light of the soul, which is point of light, which is the power of the mind and intellect, which is situated in the center of the forehead, in the form of a point of light, emerges from the eyes. When a man dies, the light emerging from his eyes vanishes.
माने आत्मा ज्योतिर्मय है, वो ज्योतिर्मय आत्मा गई, आंखें बटन हो गई, उसमें कोई रोशनी नहीं रहेगी।
That means the soul is filled with light. That soul, which is full of light, went away. The eyes became buttons. Even a little bit of light doesn't remain.
तो वो ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप अति सूक्ष्म आत्मा जो भृकुटि के मध्य में निवास कर रही है, वो अपन को अभी देह समझ रही है।
That soul, which is a point of light, which is very minute and which resides in the center of the forehead, is now considering itself as the body.
हर मनुष्य अपने को देह समझ रहा है। किसी से पूछो आप कौन है, तो कहेंगे हम डॉक्टर। आप कौन है, वो कहेंगे हम वकील। आप कौन है, हम प्राइम मिनिस्टर। आप कौन है, कहेंगे हम चमार हैं, जूता गांठने वाले। ऐसे ही बोलते हैं ना।
Every human being is considering himself as a body. Ask anybody, who are you? Then he will say, I am a doctor. Who are you? He will say, I am a lawyer. Who are you? I am a prime minister. Who are you? I am a cobbler who cuts shoes. They say so, isn't it?
ये कोई नहीं बताता कि हम ज्योति बिंदु आत्मा एक कलयुग के अंत में सब ऐसे कब्र दाखिल हो जाते, कब्र माने मिट्टी, जो भी आत्मा है सारे शरीर रूपी मिट्टी में समा गई, जैसे कि मिट्टी बन गई, अपने को देह समझ बैठती है, तो ये उसका अर्थ है कब्र दाखिल होने का।
Nobody says that they are souls, a point of light. At the end of the Iron Age, everyone gets buried in the grave. Grave means mud. All the souls have got submerged in their mud-like body, as if they have become mud. They are considered themselves as a body. This is the meaning of getting buried in the grave.
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, आखिरी जन्म में आकर के सब कब्र दाखिल हो जाते। अब विनाश का टाइम आ गया है, एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का टाइम आ चुका है।
Whether he is a Hindu, a Muslim, a Christian, in the last birth, all of them get buried in the grave. Now the time of destruction has come. Atom bombs have already been prepared. The time for Har Har Bam Bam has come.
Shankar ji ke naam ke saath Bam Bam shabd lagaya jata hai. Koi karan hoga? Vishnu ke naam ke saath kyon nahi Har Har Bam Bam lagaya jata hai? Brahma ke saath Bam Bam shabd kyon nahi uchar kiya jata hai? Kyunki Vishnu aur Brahma bombon ka visfot nahi karate.
Along with the name of Shankar, the word Bam Bam is attached. There must be some reason. Why is Har Har Bam Bam not attached to Vishnu's name? Why is the word Bam Bam not attached along with the name of Brahma? It is since Brahma and Vishnu do not cause the explosion of bombs.
Bomb banwana aur bombon ka visfot karana, ये उसके हाथ में नियंत्रण शक्ति है। जब वो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है उसी समय एटम बम नाम की चीज मनुष्यों की बुद्धि में आती है।
द कंट्रोलिंग पावर ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोडिंग देम इज इन हिज हैंड्स। व्हेन द सुप्रीम सोल कम्स ऑन अर्थ एट दैट वेरी टाइम अ न्यू थिंग नेम्ड एटम बॉम्ब comes into the intellect of human beings.
Sanchakti se ye gyan shuruaat hui. Uske 7-8 saal ke baad 20-20 megawatt ke bombiyan bani thi. Jo Hiroshima aur Nagasaki ke upar pehle visfot ki gayi.
This knowledge began from the year 1936. 7 to 8 years later, atom bombs of 20 megawatts each were created, which were initially exploded on Hiroshima and Nagasaki.
उससे 5-7 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में एटमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। कहां से ये ज्ञान आया? तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर जब आता है तो शंकर के द्वारा प्रेरणा दे करके उन वैज्ञानिकों से वो एटमिक एनर्जी तैयार कराता है।
5 to 7 years before that, the name of atomic energy wasn't there in man's intellect. From where did this knowledge come? When the Supreme Soul himself comes on this earth, he gives inspiration through Shankar and gets the atomic energy created through those scientists.
उन एटमिक एनर्जी तैयार करने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका विस्फोट करके सारी दुनिया का ध्वंस कर दे। वो ताकत भी उनमें तब आएगी जब शंकर तीसरा नेत्र खोलेगा।
The scientists do not have that much power so as to explode them and cause destruction in the whole world. Even that power will come in them when Shankar opens his third eye.
और उनको आर्डर करेगा, माने प्रेरणा देगा कि अब इस दुनिया का ध्वंस करो, नई दुनिया तैयार हो गई, नई दुनिया का संगठन तैयार हो गया, न माने जन्नत तैयार हो गई, पैराडाइज तैयार हो गया, स्वर्ग की नई दुनिया तैयार हो गई। अब इस पुरानी दुनिया का 500 करोड़ का विनाश.
एंड ऑर्डर्स देम दैट इज ही विल इंस्पायर देम दैट नाउ डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. द न्यू वर्ल्ड हैज बिकम रेडी. The gathering of the new world has got ready. That means the paradise is ready. The Jannat is ready. The world of heaven is ready. Now the destruction of this world, which has a population of 500 crore.
तो ये विनाश का कार्य सिवाय महादेव शंकर के दुनिया की कोई भी हस्ती नहीं कर सकती, न करा सकती. इसलिए उनको महादेव की स्टेज पे बैठाया गया, तीन मूर्तियां.
However, no personality in the world can perform the task of destruction other than Mahadev Shankar, nor can they get it done to someone else. So he has been made to sit on the stage of Mahadev, the greatest deity, among the three murtis.
Brahma ki murti, usse upar Vishnu ki murti, safed kapda, aur usse upar Shankar ki murti, jiski yaadgar hai lal kapda. क्या क्रांति करता है? जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों में ऐसा ज्ञान फैलाता है तो सब धर्म स्वतः ही खलास हो जाते हैं लड़े लड़े और सब धर्म की स्थापना हो जाती
है. द फिगर ऑफ ब्रह्मा अबाउ विच इज द फिगर ऑफ विष्णु इंडिकेटेड बाय द व्हाइट क्लॉथ एंड अबाउ इट द फिगर ऑफ शंकर द मेमोरियल ऑफ विच इज अ रेड क्लॉथ. What revolution does he do? He spreads such knowledge in all the religions that all the religions automatically finish off fighting among themselves and the true religion gets established.
जो सत्य में स्थापन होता है, जो नया संगठन बनता है, उसकी पालना का काम विष्णु को सौंपा जाता है. विष्णु कोई चार भुजाओं का व्यक्ति नहीं होता. चार भुजा माना चार विशेष आत्माएं सहयोगी बनती हैं, संस्कार उनके चारों के मिलके एक बन जाते हैं, जिसको विष्णु भगवान कहा जाता है.
The task of giving sustenance to the true religion which is established, the new Sangathan gathering which gets created is given to Vishnu. Vishnu is not some four-armed person. Four arms means four special souls become cooperatives. The resolves of all the four souls combine and become one, who is called Lord Vishnu.
चार कौन सी आत्माएं? राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा. राधा कृष्ण और राम सीता ये चार सहयोगी भुजा के रूप में कहे जाते हैं.
Which are the four souls? Along with Ram is Sita and along with Krishna is Radha. Radha Krishna and Ram Sita, these four are known as cooperative arms.
भुजा माना सहयोगी. कहते हैं ना, हमारा भाई मर गया जैसे हमारी दाहिनी भुजा टूट गई. तो भुजा टूट गई, दाहिनी भुजा टूट गई का मतलब क्या हुआ? सहयोगी समाप्त हो गया.
Arms means cooperative. Isn't it said, my brother expired, my right arm broke. What is the meaning of arm broke, right arm broke? It means that one who was assisting is no more alive.
तो भुजा की निशानी जो है वो शास्त्रों में या शास्त्रकारों ने या जो अजंता एलोरा एलिफेंटा में चित्र बने हैं आज से 2000 साल पहले, वो चित्रकारों ने वो भाव भरा था उन भुजाओं में कि भुजा के रूप में कार्य करने वाली चार विशेष आत्माएं हैं इस सृष्टि की, जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनती
है. The distinctive mark of the cooperative arms have been shown in the religious text by those who write scriptures or the pictures which have been made in the caves of Ajanta, Ellora 2000 years ago. The artists have filled the emotion in the arms. That the ones who are performing the task in the form of arms are the four special souls of this world who assist in the task of God.
वो संगठित जब होती हैं, तो उनको विष्णु रूप कहा जाता है, विष्णु भगवान. वो नई सृष्टि की पालना का कार्य करती है चारों मिलकर। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती उन्होंने तो 68-69 तक कार्य किया इस सृष्टि पर।
When they get united, they are known as the form of Vishnu, Lord Vishnu. Four of them get together and perform the task of sustaining the new world. Brahma along with Saraswati performed the task until 68-69 in this world.
और उसके बाद अभी शंकर के द्वारा शंकर और उनकी सहयोगिनी शक्ति पार्वती ये दोनों शक्तियां राम और सीता ये दोनों मिलकर के अभी भी यज्ञ में कार्य कर रहे हैं। एडवांस पार्टी के द्वारा इनका कार्य संपन्न हो रहा है।
And after that, now through Shankar, that is Shankar and his cooperative part Parvati, both these powers, Ram and Sita, together, both of them are working in the Yajna even now. Their task is being accomplished through the advanced party.
और संपन्न होने के बाद जैसे ही वो एडवांस संगठन तैयार हो जाएगा, वैसे ही ब्राह्मणों के संगठन की जो पुरानी दुनिया है, जिसकी सत्ता असुरों के हाथ में चली गई, कन्वर्टेड ब्राह्मणों के हाथ में चली गई।
And after it gets accomplished, and as soon as the advanced group will get ready, then the authority of the old world, of the group of Brahmin world, which has gone in the hands of demons, that is, the hands of the converted Brahmins.
वो कन्वर्टेड ब्राह्मण जो कम कला के ब्राह्मण होते हैं और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारत का नाम बदनाम कराते हैं, दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का नाम बाला करते हैं और भारत को धोखा दे जाते हैं।
Who are the Brahmins with lesser degree who get converted into the other religions from the corporates? They bring a bad name to India. They glorify the name of the religious fathers of the other religions and their followers, and they deceive India and go.
हैं पावरफुल आत्मे, क्योंकि भगवान का ज्ञान उन्होंने भी कभी लिया था, लेकिन पावरफुल होने पर भी वो ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ते। ज्ञान दाता ने जिसमें प्रवेश करके ज्ञान दिया है उस व्यक्ति का आधार लेते।
They are in fact powerful souls since even they have at some particular time taken the knowledge of God. But even though they are powerful, they do not catch the depth of knowledge. They take the support of the person in whom the one who bestows knowledge entered and gave the knowledge.
परमात्मा शिव है ज्ञान सुनाने वाला और वो प्रवेश करता है राम और कृष्ण में। कोई राम कृष्ण का भगत बन जाए और शिव को कोई महत्व ना दे, एक तो है शिव को महत्व देने वाली आत्मा और एक है राम कृष्ण देहधारियों को महत्व देने वाली आत्मा, तो कौन सी श्रेष्ठ हुई?
सुप्रीम सोल शिव is the one who bestows knowledge. He enters into the body of Ram and Krishna. In case if someone becomes a devotee of Ram and Krishna and doesn't give any importance to Shiv, one type of souls are the ones who give importance to Shiv and the other type are of those souls who give importance to the bodied souls like Ram and Krishna. Well, who is superior?
जो मुख से सुने हुए ज्ञान को महत्व दे वो है शिव को महत्व देने वाली, क्योंकि ज्ञान है निराकार चीज, और जो साकार देहधारियों को महत्व दे वो हुए देह को महत्व देने वाले देह अभिमानी। तो देवान से पैदा होने वाले हुए राक्षस और ज्ञान से पैदा होने वाले हुए देवता।
The ones who give importance to the knowledge which is said orally are the ones who give importance to Shiv. Since the knowledge is an incorporeal thing and the ones who give importance to the corporeal bodied persons, they are the body conscious souls who give importance to the body. In that case, the ones who take birth from the body consciousness are demons and the ones who take birth through knowledge are deities.
देवताओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या है 35 करोड़ जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं और इस सृष्टि पर आकर के सुख का स्वर्गीय सृष्टि का अनुभव करते हैं। बाकी इतनी दुनिया जो बढ़ी हुई है 500-700 करोड़ मनुष्य हैं इस दुनिया में, वो सब आसुरी संस्कार वाली आसुरी। अब ये आसुरी दुनिया सब ध्वंस होने वाली है।
There can be maximum 33 crore deities who listen to God's knowledge and they come on earth and experience happiness. That is, they experience the heavenly world. And the remaining world, which has expanded so much, there are 500-700 crore human beings in this world. All of them are the demons with demonic resolves. Now, this entire demonic world is going to get destroyed.
Atomic energy बनी ही इसलिए कि जैसे ही नया संगठन तैयार हो जाए, वैसे ही पुरानी दुनिया का 5-7 रोज के अंदर खेल खड़ा सा हो जाए। वो होगा चतुर्थ विश्व युद्ध। उससे पहले होना है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, जिसके आकार अभी भारत में देखे जा रहे हैं।
The atomic energy is prepared for this very reason, that as soon as the new group gets ready, the game of the old world finishes off within 5-7 days. That will be the fourth world war. Before that, the great war of Mahabharata of the household has to take place, the possibilities of which are seen in the present times in India.
Iska pakka proof ye hai कि भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही हैं, उतनी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो सब आपस में लड़ रहे हैं।
The solid proof of this is that in any country in the world, the number of political parties is not as many as there are number of parties flourishing in the Indian region. All of them are fighting among themselves.
भारतवर्ष में जितने धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पनप रही हैं, इतनी ज्यादा से ज्यादा धर्मों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा धर्म के धर्मावलंबी दूसरे देशों में नहीं। क्रिश्चियन धर्मखंड है तो वहां क्रिश्चियन से ही ज्यादा होंगे, दूसरे धर्मखंड लोग ना के बराबर।
In the Indian region, as many people of different religions are flourishing, that many people of the different religions do not flourish in other countries. If it is a territory of the Christian religion, then there will be more of Christians over there, and the people of other religious regions will be almost absent.
बौद्ध धर्म खंड होगा तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ही वहां ज्यादा होंगे, जैसे तिब्बत। दूसरे धर्म के लोग उतनी संख्या में, ज्यादा संख्या में नहीं। एक दुनिया की एक ही ऐसी राजधानी है जहां सब धर्मों ने अपना राज्य गमा किया है, दिल्ली।
इफ इट इज अ बुद्धिस्ट टेरिटरी देन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन विल बी मोर देयर, जस्ट एज इन टिबेट people of other religions are not present in large numbers. There is only one such capital in the world where people of all religions have ruled, Delhi.
आज भी देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां मंदिरों की जितनी बहुतायत है उतनी बहुतायत गिरजाघरों की भी है, उतनी बहुतायत मस्जिदों की भी है, उतनी बहुतायत गुरुद्वारों के लिए। माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और दिल्ली उसकी कैपिटल है। तो ये दूसरा धर्म का प्रूफ।
इवन टुडे इफ वन गोज टू सी, दिल्ली इज सच अ प्लेस वेयर एज मेनी नंबर ऑफ टेंपल्स आर प्रेजेंट, that many number of churches are also present, and that many number of mosques are also present. that many gurudwaras are also present. That is, the percentage of the strength of every religion is more in India, and Delhi is its capital. This is a second proof of religion.
Tisra proof hai, jitne rajya is chote se desh mein hai, aur rajyavad ke aadhar par jitna ye desh aapas mein lad raha hai, utna dusre kisi desh mein itna jhagda nahi.
The number of states present in such a small country, and in the name of statehood, as many fights are taking place within the country, that many fights do not take place in any other country. This is the third proof of religion.
जो एमपी के लोग हैं, वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं. तमिलनाडु के लोग हैं, वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं. यूपी के लोग हैं, वो यूपी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं. बंगाल के लोग हैं, तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा दे. आंध्र प्रदेश के लोग हैं, तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है. ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है.
द पीपल ऑफ एमपी वॉन्ट टू गिव मोर इंसेंटिव टू दियर स्टेट. The people of Tamil Nadu are giving a lot of incentive to their state. The people of UP want to give more incentive to their state. The people of Bengal want to give more incentive to their state. The people of Andhra Pradesh wish that only Telugu Desam Party becomes everything in the world.